many of the Vedic Shastras, this knowledge comes down within this world through the system of Parampara. That eternal system of Parampara, of Guru and Disciple, passing this knowledge down to Guru and Disciple, is the unbreakable system within this world by which we receive this divine knowledge. Without receiving this knowledge in this way, it is not possible to approach the absolute truth that is called God, or Bhagavan. So within this world, there are so many different systems of knowledge that we see present today. And so many so-called religious ideas and theisms. But all of them have so many imperfections, because they do not even answer the basic question of life: why am I suffering here within this material world? It is a fact that all of us are suffering. No one can escape this. From the moment of our birth, we suffer. We go through this life constantly being inflicted with the what are called the threefold miseries of this world: adhyatmic, adhibhautik, and adhidaitik. Adhyatmic misery means that there are so many problems caused by the body which we possess. We get sick, we get so many pains, so many injuries, etc. And also of this material mind that we have. So many worries and problems, so many distresses and anxieties. Sometimes a man becomes so distressed in his mind, even though his physical condition is quite alright, but his mental condition is suffering so much that he decides to take his own life and end it all. So in this way, this adhyatmic miseries are coming to every single living being in this world. And adhibhautik misery means that sometimes other living beings are causing troubles for me. They may be in the form of insects biting me, or dogs barking, or other human beings causing me some kind of problem, or lodging lawsuits against me. In so many ways, we receive problems from other living beings. That is called adhibhautik. And adhidaitik means that the material nature in which we are living, the environment in which we are living, is inflicting so many troubles and miseries upon us in the form of severe weather conditions, hurricanes, cyclones, too much rain, too little rain, too much heat, too cold. So the entire situation of our life is full of these threefold miseries, from the beginning of life until we die and we leave our material body. And in between this time period, we have to suffer from janma mriti jara vyadhi. Jara means old age. No one can say, I will not become old. No matter how much we try, and modern civilization today is trying very hard. They have created so many cosmetic products. They have devised so many medical processes by which they can try and preserve the material body longer, facelifts, etc. In the Western countries particularly, this is very popular because everyone wants to try to prohibit old age from coming. But no one has been successful. Old age will come to all. And finally, at the end, our death will come, and we will suffer from so many problems in old age, our hair falling out, teeth falling out, and finally, this whole material body will fail. But the fact of the matter is, that is not the end, because we will have to go to another situation again, after this life, and again we will have to suffer the same cycle of repeated So we can understand what is our position within this world. And the Vedic knowledge is teaching this. And the Vedic knowledge is coming down through divine preceptor. It's called the Guru Parampara. But in the Bhagavad Gita, Lord Sri Krishna has stated, Evam Parampara Prasam Imam Rajar Sayo Vidu Sakhari Ne Mamahata Yoko Nasra Parampara. That this divine knowledge has come down through the system of Parampara, and it has come down through the Rajarshis, those great kings of ancient Bharat, who were rishis, they were saintly kings. They understood this true knowledge, and this was handed down by this system of disciples' succession. But Sakaleneha Mahata Yogodasha Paramatapa. The nature of this material world is that gradually everything is disintegrating. Everything is disintegrating within this world, gradually decreasing. And similarly, even the pure divine knowledge sometimes becomes deteriorated by the material nature, and it is altered, it is changed. But only the pure system of divine Vedic knowledge has come from the land of Bharat. And this is the glory of India, actually, because only from India can all the questions and problems of life be solved. Because there it gives you the detailed information of what will come after this life, and what is there in the supreme Paramdham of the supreme Lord who has created everything. No other system will give you this information. But in the Vedic knowledge, this information is given very vividly. So much information is given in the Mahabharata, in the Vedas, the four Vedas, the Guru Vedas. So much is given in the Bharata, so much is given in the Puranas. And particularly, the cream and essence of all of these Vedic teachings is given in the Mahapurana, which is the Amala Purana, the spotless Purana, called Srimad Bhagavatam. This is the conclusion of all Vedic teachings. And there we will find so many descriptions of the Supreme Lord, Sri Bhagavan, who comes within this world and exhibits his eternal pastimes within this world for the benefit of uplifting all of the fallen souls here. So only through this system of disciples' succession can we receive this divine knowledge. But unfortunately, in the case of Kali, it is a prominent fact that even from India, from the land of India, so much of this knowledge has been lost. And we see in so many countries of the world, the people from the land of India, of Bharat, have come to settle in different parts of the world, just like here in Fiji. And because the system was so strong from previous centuries, they are still able to maintain, to some extent, this proper knowledge. But in actuality, if there is not a correct guide, a guru, who is a Tattvadarshi, who knows the Supreme Truth and is able to see the Supreme Truth, then the gradually this knowledge will be lost, and we will find so many imperfections, and gradually people will also lose interest. But this is the highest benefit that one can attain in this human form of life, is to come into connection with the divine guru who has his spiritual knowledge and who has realized this truth himself, because he can give this truth to us. So in the Bhagavad Gita, Krishna has stated that he has recommended to Arjuna, Sabdhiti Pramimatena Pariprashnena Sevaya Upadekshantite Jnanam Yarina Tattvadarshinah, that if you want to understand this divine knowledge, Sabdhiti, this truth, this special knowledge, then you must go to a Tattvadarshi, and you must what is called pranipat. Pranipat means that you give yourself to that person by offering respectful obeisances at his feet, and with a very submissive heart, you question, oh my dear sadhu, my dear guru ji, what can I learn from you? Please instruct this knowledge to me. Upadeshyanti, teyana. He can impart this knowledge. So, pariprashna is necessary to be very inquisitive, to be asking, what is the supreme goal of my life? How can I attain my supreme benefit? Please inform me of this. And the guru will explain to you that your benefit is not here within this world. No matter what arrangements that we try to make within this world, no matter how much wealth that you try to accumulate within this world, you will remain dissatisfied. Because this world is not your real home. The Atma is from another realm. And the Atma is misplaced within this world. So that the fish that is taken out of the water can never be properly happy and situated. It will simply flap and grab and die. So similarly, because we are Atma, Jivatma, we can never attain real true happiness within this world, no matter how many arrangements are made. Modern science today is trying to make so many arrangements. They have made so many inventions to advance technology so that our lives can become better, so to speak, so that it can become easier for living, that we can become free from our suffering. But they have not achieved this yet. No matter how advanced they become in modern medicine, still so many diseases are coming. In fact, more diseases are coming now than had ever come in the past. We even find that in Western developed countries, there is the highest rate of cancer, heart disease, and all of these types of diseases. Because the civilization that they have created is so artificial, there are so many pollutants within the atmosphere, there is so much anxiety of life, because they have lost the goal of life. They do not understand what is the real goal. That I must obtain the true wealth of my soul. And that wealth is to be reconnected with our eternal relationship with the Supreme Creator. For this reason only have we come to this human form. And if we do not realize this fact in this human form of life, it is a very special opportunity we have been given. We have been given intelligence to investigate the source of our existence. No other species of life has this intelligence, but if we misuse this intelligence, then again we can fall back down to the lower species of life and lose this opportunity for millions of years. So we must understand by the inspiration of Vedic knowledge and by the lips of the true Sadhu Guru that our real benefits will lie in performing the activities that are prescribed in the Vedas. And specifically in this age of Kali, there is a very clear direction given. It is said there that in this age of Kali, if we want to achieve perfection, if we want to attain God realization, and we want to attain complete happiness, then we must take the process given in this age. And that is said there, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Eva Kevala. Three times in this stage. Because it is giving emphasis that in this age of Kali, if we want perfection, we must chant the holy names of the Supreme Lord, because these names have been specifically empowered in this age to deliver us from all the evils of Kali Yuga. And without this, Kalova, Nasdeva, 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 Anyata, we will not be able to attain perfection in any other method. Not like in previous Yuga, we have been hearing the past couple of days, that in Bhagavad Yuga, in Sakti Yuga, in Dvaita Yuga, there are different dharmas, different Yuga dharmas. But those Yuga dharmas will not be as effective in this age of Kali. Therefore, the Yuga dharma for this age of Kali is Harinam Sankirtan. So if we want our true benefit, then we can understand that this human form of life is very rare, it is very precious, and it is also a very short period of time. Only a few short years we have. And then we will go into our next body, and we do not know what that body will be. So we must take very seriously the chance and opportunity that we have at present. And we must try to apply ourselves diligently and follow the directions of Guru, Sadhu, and Shastra. And then our lives can become happy, and we can know supreme success. Thank you very much. Hare Krishna.
अभी काम हमने समझाया था कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के पास में गंगा के किनारे वो बैठे थे, पानी पीना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, रात सिंहासन और मुकुट भी उन्होंने छोड़ दिया, धनुष पानी छोड़ दिया और वहीं पर बैठ गए। और सब ऋषि महर्षि सब लोग 88,000 और मैंने कितने कितने सब लोग वहां पर मिले। तो बड़े आश्चर्य की बात, उन दिनों में आज व्यक्ति को सूचना नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था और अवसर नहीं था, किंतु विज्ञान बहुत सुंदर था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मिनटों में चारों तरफ में खबर हो गया और कैसे मिनटों में वो कैसे वहां से कहां कहां से बड़े से विभिन्न पार से वहां पर सभी लोग। अब परिचित महाराज जी ने पूछा, महाराज हमारा एक प्रश्न है, दो प्रश्न है, जो अभी तुरंत मरने वाला है, जिससे कोई लेने ही नहीं है, जिसको बीच समय कोई बचा नहीं सकता, तुरंत अभी मरने वाला है, बिस्तरे पर सोया है मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? और जो आज नहीं तो कल, नहीं परसों, नहीं वर्षों, नहीं 100 वर्ष के बाद, नहीं 500 वर्ष के बाद मरेगा जरूर, उन्होंने बताया सभी संतान बड़ो कारण जो भक्ति रथो चले अहे उसका प्रतिहता ज्ञान संप्रेषित। देखो भाई मैं अशुभ अवकाश से दुआ बतला रहा हूँ, जो पूरा कभी मरने वाला हो, अभी मर रहा हो और पूरा का होश में है, तो उसके कान में हरि नाम कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। इतना नहीं समय है, उससे पहले ही मरने वाला है, तो कृष्ण कृष्ण या राम राम से कर लो बस। और जैसे तुम्हारे पास में गंगा जल और तुलसी है, उसकी मुख्य पर जैसे मर्जी भी आए कोई बात नहीं, तो भी वो नाम सुना दो, उस पर गंगा जल कर दो, सगन महाराज के पुत्र कपिल देव के साथ से वो मर गए थे और सैकड़ों वर्ष बाद गंगा नदी आई, उनके पानी के पद से उनकी केवल हड्डियां का चूर्ण वहां पर होगा और कुछ नहीं था, और स्पर्श से सभी बैठे चले गए। गंगा जी की ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा है, कहते गंगा जी में पानी भरा हुआ था पानी थी और किनारे पर एक उसमें सांप का रहने का जगह था, जिसको मान कहते हैं या गड्ढा कहते हैं, उसमें था, वो गंगा का पानी उसमें भरने जा रहा था, वो सांप वहां से बिखर कर निकल करके कहीं जाना चाहता था, और उस समय में गौरव जी कहीं अपने भोजन के लिए खोज रहे थे, उन्होंने देखा सांप ने ऐसे किया बाहर में आने के लिए, और उसी समय गौरव जी ने पंजे से पकड़ लिया और उसे निकाला, और निकालते ही ऊपर ले जाने लगे, इतने में उसकी पूछ गंगा नदी में उलझ गई। अब उनके पंजे के चाप से और चोट से वो बेचारा उसका प्राण निकला, तो हुआ क्या, गंगा के स्पर्श से केवल एकदम बदल गया उसका शरीर, वो चक्रगुण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहां उपस्थित हो गया, और गुरु जी ने देखा कि तो हमारे प्रभु के कारण हो गया, तो अपने पीठ पर बैठा करके बैकुंठ में ले गए। ऐसी गंगा की महिमा है, तुलसी की महिमा ऐसी है, प्राण नहीं निकल रहा किसी प्रकार से, बड़ा दुखी है कोई और तुलसी का पत्र रूप में दे दो मुख में थोड़ा सा, देखो जिस कैसे या प्राण निकल जाएगा या बच जाएगा, ये सब चीजें परम सत्य हैं। इसलिए भगवान का नाम बहुत प्रभावशाली है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसे जब भी कोई मरने वाला उसके कान में सुना था, जब भी नहीं सुनने वाला है तो भी गंगा जल दे करके और ऐसे ही तुम जान करो राम राम, देखो उसका कल्याण हो जाएगा। और जो भी कुछ दिन तक जीने वाले हैं, कोई गारंटी नहीं है कब मरेंगे, उनके लिए भगवान की लीला कथाओं का जैसे यहाँ लीला कथाएं हो रही है सुनो, और सुनिए कि भगवान तुम्हारे उन कामों में कथा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके हृदय सभी पापों को और जितने अनर्थ हैं सब को दूर करके हृदय को निर्मल कर देंगे, और अंत में उनकी सदगति। बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, ज्ञानी हैं, यहाँ तक कि हम ब्रह्मास्त्र करते 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 जगत के ऊपर बहुत उठ गए हैं, किंतु उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े योगी लोग हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, ध्यान करने वाले हैं, समाधि लगाते हैं, किंतु उनके अपने कर्मों का प्रारब्ध जरूर तो करना पड़ेगा, किंतु कपई सुना सत्य प्रारब्ध कर्मों। यदि एक आदमी भूल से भी मरते समय में विशेष करके यदि भगवान का नाम उच्चारण करे, उसके जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना भी पाप है शक्ति मिल जाए, उस पक्ष में घूमना पड़ेगा, कभी नहीं घूमना पड़ेगा। भगवान नाम कहते हैं यदि शुद्ध रूप में उन्हीं हो गया तो उसके पाप सब जल सके खास हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, इस जीवन में भी परजीवन में सुखी होगा। यदि विश्वास में है तो आप कल उपेक्षा करके देखो, दस बीस दिन में आप ऐसा करते हैं, यदि आपका बदल नहीं गया तो उसके लिए मैं गारंटी हूँ। मैं कहीं जा नहीं रहा, अभी डरी नहीं हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया में रहूँगा, हम सब फोन से बतलाएंगे। आप कर करके देखिए, आप सुखी होते हैं कि नहीं, आपका हृदय बदलता है कि जब इसे कहा गया परीक्षित महाराज जी को, उन्होंने कहा जैसे कि जो अवस्था है वो भगवान का नाम, जो कुछ चाहने वाला है कुछ नहीं चाहता, जो मुक्ति चाहता है, जो धन संपत्ति चाहता है, कुछ भी चाहता है वो भगवान का नाम। विशेष करके कंजूर वो क्या है, अकाम सर बता मुक्त काम उदार भी तिब्रे भक्ति योगम विशेष करके नाम संकीर्तन, कुछ भी चाहते हो जो में कोई सुखी नहीं है, जरा नाम तो करो। और जब विशेष करके ऐसे कोई गुरु मिल जाए जो नाम करने वालों में नाम में सिद्धि है, संसार से विरक्त है और उनको संसारी इन चीजों से कोई मतलब नहीं, ऐसे तत्वज्ञानी हो, भक्त हो और उनके मुख से निकला हुआ यदि नाम आप ले देखेंगे कैसा चमत्कार हो जाएगा, एक संदर्भ में सब कुछ बदल जाएगा, धन भी संपत्ति मिल जाएगी, जीवन में सुखी भी हो जाएंगे, मुक्ति भी जाएगी वो भी हो जाएगी और अंत में प्रभु का धाम भी आपको मिल जाएगा। ऐसी ये है, इसकी कथाएं हम लोग धीरे धीरे सुनाएंगे, अभी तक सब कुछ नहीं हम लोग सुना पाए हैं, किंतु फिर भी यदि हम भविष्य में आप लोग यदि सुनाएं और हम लोग सुनाएं तो इन कथाओं को कहेंगे बड़ी भारी से शक्ति संजय। कैसे भगवान के नाम के द्वारा जो आदमी कर्म के द्वारा पुरुषार्थ के द्वारा जो चीज नहीं कर पाता है वो कैसे हो जाता है, अभी गुरु का चरित्र आपको संक्षेप में 10 मिनट में ये बताएं कैसे एक छात्र कैसे अपने पिता का राज चाहता था और वो अपने दूसरे सौतेली माँ के से जो उत्पन्न हुआ उसको देना चाहता था, किंतु कैसे हो गया कि सारे तो उसी का राज्य नहीं सारे पृथ्वी का राजा वो बन गया और अंत में जो अच्छा फल उसको छोड़ करके भगवान की रुचि गति हो गई, भगवान की सेवा पा गई। रुचि के संबंध में संक्षेप में आप बोलिए आगे बढ़ जाए वहाँ चले जाए जो सभी लोग पकड़ गया अभी देर और बढ़ते हैं।
सुनीति और सुनीति
इन दोनों का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या, हम लोग को समझना पड़ेगा। सुनी क्या था, जो अपने बच्चे को जगत को अच्छे की शिक्षा देती है, भगवान को भजन करने पर सब कुछ किया हो जाएगा ये शिक्षा देती है, माता पिता का आदर करना चाहिए यह शिक्षा देती है, वो है सुनीति। और सुनीति जो खाओ पियो मत करो इस दिन जाने लगी, इस प्रकार से शिक्षा देती है वो है सुनीति। उत्तम पद राजा रक्षमण अपनी पत्नी सुनीति के साथ राज सिंहासन में बैठ चुके थे।
ये भी ध्यान दीजिए कि उनकी पहली पत्नी जो थी वो सुनीति थी, उनसे दो पैदा हुई थी, और उसमें जब वो प्रौढ़ हो गई तो एक नवजोती लड़की को उन्होंने देखा, सड़क भड़क वाली, बड़ी सुंदरी किंतु उतनी गुणवती नहीं, उस सड़क भड़क के कारण उससे उन्होंने शादी और कर ली। अब जो छोटी वाली है बड़ी सुंदरी है, अभी नवजोती है, राजा उसके बच्चे पुत्र रह करते थे, और जो अच्छी जिंदगी वाली थी, जो पति पारायण थी, धार्मिक थी, उनका बेटा तो हुआ, और वो दोनों राज्य से बाहर निकल कर रहने लगे, क्योंकि उनको आदर नहीं करते, और छोटी रानी ने उनको निकलवा दिया, वो गांव के बाहर में किसी प्रकार से जिनका निर्वाह करते, राजा की लड़की होने पर भी, और उनकी राजा उन्हें अपने बेटे के साथ से राजा के साथ में
राजा अपनी जिनवी पत्नी सुनीति के साथ सिंहासन में बैठे हुए थे। अपनी पहली बारी तो ठीक थी सुनीति, उनका भी बेटा था, उनका नाम ध्रुव, और सुनीति के बेटा का नाम था उत्तम। ध्रुव तो छोटा था, 4-5 साल का लड़का, वो क्या समझते हैं कि पिताजी मेरा भी माता जी मेरा प्यार करते नहीं करते, पिताजी को देखकर तो उनका भी अलग हुआ कि मैं भी कई गोदी में बैठूं।
पहले से उत्तम बैठा हुआ था,
और पहले से उत्तम जो बैठा हुआ था उनका छोटा भाई, उनको भी कई मैं भी बैठूं, बैठने के लिए गया, उनकी बीमार था, सुनजी उनको जुड़ा किया, रे ध्रुव तू क्या पिताजी के गोदी पर बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा, तू मर कर के पहले आपको से जन्म ले तभी तू सिंहासन में बैठ सकता है। क्षत्रिय बालक ये बीमाता का बीमाता की ये बात तो वन
छोटी सी बात से भी निर्णय हो रहे हो तुम्हारा सब कुछ किया हो जाएगा, तुम्हारा सिंहासन से क्या बात है, तुम निश्चिंत रह रहे हो, माँ उनसे सांत्वना दी, रात के समय माँ के गोदी में सो गए, माँ तो सो गई जो हमारा सोए नहीं, जब देगा माँ सो गई उत्तर के चल पड़े, माँ ने बता दिया कि भगवान का भजन करने पर पद्म वचन हरि के भजन करने पर पिता के गोदी में बैठना समस्त दिन के सिंहासन बैठना हो जाएगा, इधर चल पड़े आपको भजन का मुक्का क्या है मथुरा यमुना जी ने स्नान किया, भगवान को भजन करना चाहा, भजन करे कैसे, गुरु वर्ण तो हुआ नहीं था, शास्त्र में बताया गया बिनु गुरु भवन जी भजे न कोई जो विनती शंकर सम होए, विनती का ब्रह्मा शंकर शास्त्री जी, ब्रह्मा जी या शिष्य के समान कोई भी ऐसे ज्ञानी हो जाए बिना गुरु वर्ण किए किसी का भी भगवत भजन संभव नहीं, कोई भी संस्था समुद्र से पार नहीं हो सकते। हमारे मनुष्य की बातें किया मनुष्य का तो संत रामचंद्र जी आए, क्या किया वशिष्ठ जी को दूसरे रूप में वर्ण किया, किस जगह पर दोस्त लोग कहते हैं हम पति पत्नी या बाप बेटा माँ बेटा एक दूसरे शिक्षा कैसे हूँ, हम तो भाई बहन हो जाएंगे, रामचंद्र जी स्वयं भगवान या हम लोग के पंडितों थे, रामचंद्र जी सीता जी दशरथ कौशला को एक शिक्षा, लक्ष्मण कुंभिका ये सब वशिष्ठ जी से शिक्षा ली थी, भगवान मेरा पुरुष कृष्ण से भी आए क्या किया उस दिन जा करके हमसे सब कुछ सीखा जो गुरु वर्ण जरूरी है बिना गुरु किए हुए भगवत भजन संभव नहीं भगवान अपने प्रिय भक्त नारद जी को भेज दिया हे नारद तुम मौसम में जाओ मेरे भक्तों को भजन करना चाहता है लेकिन उनका गुरुवरण नहीं हुआ गुरु का लक्षण क्या है जैसा कुछ सीखना चाहते हैं जगत में मुझे एकता से काम जाना पड़ेगा ऐसी भजन की एकता है उनको गुरु कहा गया है उनका लक्षण क्या है जो एक बार हूँ हम मानने के लिए हम एक हफ्ते का खूब मजा आता है